તારીખ 1/12/1993 શ્રી મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 73.
મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક, સાતમા અધિકાર. નિશ્ચયા ભાષી જૈના ભાષી મિથ્યા દ્રષ્ટિ કા સ્વરૂપ દર્શાતે હૈ. निश्चयाभासी जिस तरह से प्रवृत्ति करता है और जो अपनी समझ है इसी समझ को शंका के रूप में, प्रश्न के रूप में पंडित जी ने रखा है.
गुजराती 511 प्रश्न शास्त्र
में तो बात वहां तक चली थी कि उन्होंने ऐसा माना है कि शुभोपयोग और उसमें तो होता है क्लेश होता है और विटिगना प्रतिगना और व्रतादि नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें भी बंधन होता है. तो उसका उत्तर दिया कि कषाय तीव्र होने के बजाय मंद होता है वो ठीक है. ऐसा अभिप्राय नहीं होना चाहिए कि भले ही तीव्र कषाय हो मंद कषाय छूट जाए और भले ही तीव्र कषाय हो. ऐसा जब कषाय के अभाव का जिसको अभिप्राय होता है उसको कषाय की तीव्रता का अभिप्राय कैसे हो सकता है?
नहीं
होगा. इसको अभाव करना है वो तीव्र कषाय को पसंद कैसे करेगा? ऐसा जब उत्तर दिया तो फिर उन्होंने अपनी धारणा में से एक और बात निकाली. फिर वह कहता है कि शास्त्र में शुभ शुभ को समान कहा है, मैंने पढ़ा है. निश्चयाभासी कौन होता है? जैन शास्त्र पढ़ने वाला मिथ्या निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि होता है. तो शास्त्र में तो लिखा है कि शुभ शुभ तो समान है इसलिए हमें तो विशेष जानना योग्य नहीं है. तीव्र मंद कषाय वाली बात आपने बताई लेकिन हमने तो ये पढ़ा है कि दोनों समान है. तो दोनों समान है वो तो जाति अपेक्षाएं बताई थी, कषाय की तारतम्यता की अपेक्षा से तो नहीं कहा था. देखो शास्त्र में आएगा कि शुभ शुभ दोनों समान है, दोनों आश्रव के कारण है, दोनों बंध के कारण है, इसलिए दोनों एक से हैं.
दोनों जंजीर
है,
दोनों जंजीर है,
दोनों जंजीर है, बंध करता है. एक सोना की बेड़ी है, एक लोहे की बेड़ी है, क्या बेड़ी पड़ गई उसको क्या फर्क पड़ता है? अध्यात्म शास्त्र में तो पाप की चर्चा ज्यादा नहीं की, पुण्य को ही फटकारा है, बार बार हे किया है. तो फिर भी इसमें एक पहलू है तारतम्य भेद का, वो समझ करके वो बात चली थी. समाधान देते हैं. और वो किसको कहा था, किस योग्यता वाले जीव को वो कहा था? कि जो शुभ में फंस गया था वो अशुभ तो नहीं करता था लेकिन शुभ में फंस गया था उसको निकालने के लिए बोला था, तेरे लिए नहीं बोला था. ये दवाई तुझे लागू होती नहीं है. जो जीव शुभोपयोग को मोक्ष का कारण मानकर उपाधि मानते हैं और शुद्ध को नहीं पहचानते, क्या है? वितराग भाव रूप शुद्धोपयोग कैसा होता है उसकी जिसको पता ही नहीं है, पहचान नहीं है, और शुभोपयोग को ही मोक्ष का कारण मानकर उसमें फंसता है बराबर. उनने शुभ शुभ दोनों की अशुद्धता की अपेक्षा, क्या अशुद्ध जाति है, उन्हें शुभ और अशुभ दोनों की अशुद्धता की जाति की अपेक्षा एक सी जाति है, उस अपेक्षा से बंद कारण की अपेक्षा से दोनों बंद करता है उसी अपेक्षा से समान बतलाया है, लेकिन तारतम्य भेद से समान नहीं बतलाया। जो जाति को पहचानते वो स्वभाव को पहचानते हैं, और वो तारतम्यता को नहीं पहचाने ऐसा नहीं बनता। स्वभाव तो सूक्ष्म होता है, विभाव का स्वभाव भी सूक्ष्म होता है, और तारतम्यता स्थूल होती है। तो स्थूल तारतम्यता तो आम समाज वाला भी पहचान जाता है आदमी कि उसको क्रोध अभी बहुत आया है, अभी वो शांत हो गया है, उतना तो मामूली आदमी भी समझ सकता है। तो तत्वज्ञानी नहीं समझे वो बात, वो तो सूक्ष्म परिणामों को समझने वाला जीव है, तो तत्वज्ञान का अभ्यास करता है।
नारियल का दृष्टांत दे सकते हैं, नारियल का नारियल पहले छिलका उखाड़ा जाता है तो उसको फोड़ा जाता है।
हाँ ठीक है, छिलका तो फोड़े नहीं, तोड़े नहीं और सीधा ही फोड़े, वो कैसे बनता है? कुछ अंश में लागू पड़ता है। तथा शुभ अशुभ का परस्पर विचार करें तो शुभ भाव में कषाय मंद होती है, इसलिए बंधहीन होता है, और अशुभ भाव में कषाय तीव्र होती है, इसलिए बंध भी बहुत कठिन होता है। तीव्र होता है मतलब बहुत होता है मतलब कठिन होता है। इस पर अशुभ की अपेक्षा सिद्धांत में शुभ को भला ही कहा जाता है। सिद्धांत की अपेक्षा तो अशुभ के और शुभ के दोनों के बीच में अगर विचार किया जाए, परस्पर विचार किया जाए, तो अशुभ से तो शुभ अच्छा है, लेकिन फंसने के लिए अच्छा है वो बात नहीं है। जैसे रोग तो थोड़ा या बहुत बुरा ही है, रोग मात्र बुरा है अच्छा नहीं है, परंतु बहुत रोग की अपेक्षा से थोड़े रोग को भला भी कहते हैं। जैसे कि किसी को बहुत एक्सीडेंट में लग गया और किसी को कम लगा, एक्सीडेंट तो एक सा ही था, लेकिन जिसको ज्यादा लगा उसको ज्यादा चोट आई, ज्यादा नुकसान है, कम लगा उसको कम नुकसान है। जिसको भयंकर रोग हुआ उसको तो जान जाने की तैयारी होती है, आयुष का भी डर लगता है कि मर जाएंगे। जिसको मामूली बुखार बुखार आया है तो वैसे ही एक दिन खाना नहीं खाएगा तो बुखार चला जाएगा।
कहते तो हम बच गए, हम तो बार बार बच गए ना।
हाँ
भयंकर एक्सीडेंट है, कई लोग मर जाए, हम बच गए हमको।
हाँ ऐसा लगता है। तो ऐसे तो दोनों के बीच में दोनों नुकसान, तो नुकसान दोनों ही है, नुकसान में मुनाफा नहीं है, मुनाफा में
नुकसान नहीं है।
नुकसान को भला जानना वो बात नहीं है, लेकिन थोड़ा नुकसान ज्यादा नुकसान को नहीं समझे वो तो बहुत स्थूल बुद्धि है। ऐसी बात यहाँ नहीं चलती है चिनागम में। इसलिए शुद्धोपयोग न हो तब अशुभ से छुटकर शुभ में प्रवर्तन करना योग्य है, शुभ को छोड़कर अशुभ में प्रवर्तना योग्य नहीं है। कोई तीव्र कषाय कराने के लिए तो उपदेश देते नहीं, या पाप कराने के लिए तो उपदेश देते नहीं है। फिर वह कहता है और दलील देता है कि कामादिक या शुद्धादिक मिटाने की अशुभ प्रवृत्ति अशुभ रूप प्रवृत्ति तो हुए बिना रहती नहीं है, और शुभ प्रवृत्ति इच्छा करके करनी पड़ती है, और ज्ञानी को इच्छा चाहिए नहीं, इसलिए शुभ का उद्यम नहीं करना। ये थोड़ा सूक्ष्म दलील दिया है उन्होंने, क्या कि जो कामादिक और क्षुधादिक है उसकी तो सहज वृत्ति हो जाती है पूर्व संस्कार से, और शुभ भाव जो है वो तो इच्छा से बनाना पड़ता है। तो हम जानबूझ करके ये शुभ भाव का विभाव क्यों करें, ये इसका दलील है। तो सहज हो जाए हमें क्या करनी है, लेकिन वो तो सहज होती है, भूख लगती है, बारह बजती है भूख लगती है, क्या करें। शुभ को तो मंदिर जाने के लिए विकल्प करना पड़ता है, शास्त्र पढ़ने के लिए विकल्प करना पड़ता है, तो ये हम क्यों करें। उत्तर
इच्छा करो,
नहीं उसमें उसका क्या अभिप्राय है कि वो तो हमारे बस की बात नहीं है। 12 बजता है, भूख लग जाती है, नहीं चाहे तो भी लग जाती है,
अच्छी है।
और सुबह की तो चाहना करनी पड़ती है, शास्त्र खोल करके बैठना पड़ता है, घर से मंदिर जाना पड़ता है, अष्ट द्रव्य से पूजा करके इच्छा सब करनी पड़ती है, तो जानबूझकर हम वो इस भाव को क्यों करें। सहज हो जाए दूसरी बात है, और ये तो हमने किया
है।
हाँ, उसके लिए क्या करना है, वो एक स्पष्टीकरण मांगता है, ऐसा दलील दे करके स्पष्टीकरण मांगता है। अच्छी बात निकाली है। उत्तर, शुभ प्रवृत्ति में उपयोग लगने से तथा उसके निमित्त से वितरागता बढ़ने से कामादि गहीन होते हैं। क्या शुभ प्रवृत्ति में उपयोग लगने से अशुभ तो टूटता है, और शुभ प्रवृत्ति में रहकर फिर आगे पुरुषार्थ करे तो वितरागता आ सकता है, अशुभ में से तो आ सकेगा
नहीं।
तो इसलिए उनके जो पाप थे वो तो सहजहीन हो जाते हैं, और क्षुधादिक में भी संकलेश थोड़ा होता है, और ऐसे अभ्यास से क्षुधादिक जो लगे उसमें भी खिंचाव है वो कम हो जाता है, रसमंद पड़ जाता है। इसलिए शुभोपयोग का अभ्यास करना, शुभ को छोड़ करके शुभोपयोग का अभ्यास करना। उद्यम करने पर भी यदि कामादिक व क्षुधादिक पीड़ित करते हैं तो शुभ का उद्यम करता है, फिर भी ये परिणाम से तुझे पीड़ा होती है, आकुलता होती है, तो उनके अर्थ जिससे थोड़ा पाप लगे वह करना, पूरा तो नहीं छूटेगा, क्षुधा पूरी छूट जाएगी ऐसा तो नहीं बनेगा। तो ये तो है कि जिससे अल्प हो सके मंद रस से प्रवृत्ति करना, सर्वथा पाप प्रवृत्ति संसार में छोड़ी जाती नहीं है, छूटते नहीं है, सर्वथा पाप के परिणाम छूट जाए और अकेले शुभ के परिणाम सभी मुमुक्षुओं को हो जाए ऐसा तो बनता नहीं है। हाँ, छठे गुण स्थान में ये बनता है, पांचवें गुण स्थान तक ये संभव नहीं है। छठे गुण स्थान में अशुभ छूट जाता है और अकेला शुभ और शुद्ध दो ही उपयोग रहता है। मैंने थोड़ा बात कहते हैं तो उंगली देते हैं तो पोंछा पकड़ते हैं, पोंछा क्या अगला पकड़ लेता है, उंगली हमारी पकड़ रहा तो इधर से पकड़ता है, उंगली से नहीं पकड़ रहा इधर से पकड़ देता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस बात की जितनी मर्यादा है उतनी मर्यादा में उसको समझ करके अंगीकार करना, इससे आगे जाना नहीं है। इसलिए शुभ का उद्यम करने पर भी कामादिक और क्षुधादिक तो पीड़ा करेगा, तो उनके अर्थ तो जिससे थोड़ा पाप लगे उतना करना, जितना मंद रस हो उतना मंद रस से प्रवृत्ति करना, तीव्र रस से खाना नहीं खाना। परंतु शुभोपयोग को छोड़कर निशंक पाप रूप प्रवर्तन करना तो योग्य नहीं है, ये निश्चयाभास है। निश्चयाभासी जीव निशंकता से पाप करता है, ये वृत्ति तो बिल्कुल विपरीत है, यानी अधिक विपरीत है, ऐसा तो करना चाहिए
नहीं।
और तू कहता है कि ज्ञानी के इच्छा नहीं है और शुभोपयोग इच्छा करने से होता है, तो जिस प्रकार कोई पुरुष किंचित मात्र भी अपना धन देना नहीं चाहता, परंतु जहाँ बहुत जन जाता बहुत धन जाता जाने वहाँ अपनी इच्छा से थोड़ा धन देने का उपाय करता है, उसी प्रकार ज्ञानी किंचित मात्र भी कषाय रूप कार्य तो नहीं करना चाहता, परंतु जहाँ बहुत कषाय रूप अशुभ कार्य होता जाने वहाँ इच्छा करके अल्प कषाय रूप शुभ कार्य करने का उद्यम करता है। ठीक बात है, या अफ्रीका में ये बनता है, वो नैरोबी हम गए थे, वो लोग क्या करते हैं कि ऐसे तो घर बंद करके भीतर में ताला लगा करके बैठ जाते हैं, फिर भी कभी कोई लुटेरा आ जाता है, घर खुला रह गया या जैसे वैसे पिस्तौल से खुलवाया, तो वो लोग थोड़े पैसे रखते हैं, पैसे तो बहुत हैं उन लोगों के पास, लेकिन 150,000 रख लेते हैं, थोड़ा सोना भी रख लेते हैं। मालूम है कि यहाँ तो लूट बहुत होती है, तो घर में कुछ नहीं रखे हैं तो वो लोग खून करके चले जाते हैं। क्या घर में कुछ नहीं रखते हो, बहुत पैसे वाले हैं फिर भी घर में कुछ नहीं रखते हो, तो खून करके चले जाते हैं। इसलिए वो जान नहीं चला जाए तो घर में 10-20-25-50,000 लाख रुपया रख लेता है। जब वो आते हैं कोई, तुम ले जाओ, इच्छा करके देते हैं, क्या
करके देते,
ये हमारी चाबी है, ये अलमारी है, तुम खोल करके, इधर पैसे पड़े हैं, इधर जेवर पड़े हैं, तुम ले जाओ, लेकिन हमको मारना नहीं। इच्छा करके भी दे देते हैं। या कोर्ट में कोई फंस गया कोई आदमी, कभी तुमने ये अपराध किया है, लेकिन जानबूझ करके नहीं क्या किया है, मानता हूँ हो गया है हमारे से, नहीं तुमको दंड देना भुगतना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलता है इधर, कानून का भंग होता है तो दंड भुगतना पड़ता है। तो श्रीमंत पैसा वाला बोल क्या बोलेगा, गरीब हूँ साहब थोड़ा कम करना, ज्यादा दंड मत करना, क्योंकि उसमें उसके पास पावर होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इतना दंड कर सकते हैं, कम से कम इतना, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का जेल में रखना और कम से कम 1 दिन कोर्ट बैठे वहां तक की सजा, कोर्ट में उसको शाम तक बैठना है, शाम को फिर घर में चला जाना है। तो ऐसे डिस्क्रिशनरी पावर उसको कहते हैं, क्या अपना डिस्क्रिशन से वो कैसा भी दंड करते हैं कर सकते हैं, तो क्या करेगा, पैसे वाला हो गया वो भी कहेगा 2,000 नहीं करना, हम गरीब आदमी है, 200 में पता पटा दो, 200 में, और 200 का 20 होता है तो 200 देना नहीं चाहता है, लेकिन अगले को ये लगेगा अच्छा सामने से 200 दे रहा है, चला के 200 दे रहा है, चला के नहीं देता है, वो 1800 बचाने के लिए 200 की बात करता है। ऐसे अशुभ परिणाम आए बिना जीव को संसार में नहीं रहता, तो उसके बचने के लिए थोड़ा शुभ परिणाम इच्छा करके भी करता है तो वो सही करता है, रिश्वत देता है, कुदरत को एडजस्टमेंट है, उसको क्या बोलते हैं
एडजस्टमेंट।
अगर हट करके नहीं करे कि नहीं शुभ नहीं करना है मुझे, तो अशुभ में चला जाएगा, क्योंकि हट का परिणाम स्वयं अशुभ है, शुभ नहीं है, तो परिणाम और बिगड़ जाएगा। वो भी व्यय करते हैं बचाने के लिए करते हैं, व्यय करने के लिए कोई व्यय करते नहीं है, उसमें बुद्धिमानी है ऐसा बोलते हैं, उसमें देने में भी बुद्धिमानी है, ऐसी बात है। और धन तो कमाया बहुत, लेकिन खुद मर गया तो कमाया सब बेकार हो गया। इस प्रकार यह बात सिद्ध हुई कि जहां शुद्धोपयोग होता जाने वहां तो शुभ कार्य का निषेध ही है। क्या इस प्रकार यह बात सिद्ध हुई कि जहां शुद्धोपयोग होता जाने वहां तो शुभ कार्य का निषेध ही है। शुद्धोपयोग के पुरुषार्थ में शुभ को पकड़ने की बात कहीं शास्त्र में नहीं है, और जहां अशुभ उपयोग होता जाने वहां शुभ का उपाय करके भी अशुभ से छूटना और शुभ को अंगीकार करना योग्य है। बहुत साफ बात है, वो बात समझ में नहीं आए ऐसी नहीं है। इस प्रकार अनेक व्यवहार कार्यों का उत्थापन करके जो स्वच्छंदपने को स्थापित करता है उसका निषेध किया, इस स्वच्छंदवादकता का निषेध किया। अब केवल निश्चयाभास के अवलंबी जीव की प्रवृत्ति कैसी होती है, वो कैसा प्रवृत्ति करता है, अब उसी केवल निश्चयावलंबी जीव की प्रवृत्ति बतलाते हैं कि एक शुद्धात्मा को जानने से ज्ञानी हो जाते हैं, अन्य कुछ भी नहीं चाहिए। क्या क्या वो उसका अभिप्राय है, क्या जानता है वो, कि एक शुद्धात्मा को जानने से हम ज्ञानी होंगे। हमको शुद्धात्मा के अलावा कुछ जानना ही नहीं है ना, हमको हमारा दोष भी नहीं जानना, दूसरे शास्त्र भी नहीं पढ़ना, दूसरे न्याय की जरूरत नहीं, कोई बात की जरूरत नहीं, एक शुद्धात्मा को जान ले, मैं एक नायक हूं और मैं शुद्ध हूं, बस बात खत्म, हमको दूसरी कोई बात हमारे पास करो ही मत, त्रिकाली की बात करो, पर्याय की बात नहीं करो, क्या
त्रिकाली की बात करो।
हाँ, ऐसा जानकर कभी एकांत में बैठकर ध्यान मुद्रा धारण कर देखो क्या प्रवृत्ति करता है। हमको तो एकांत में बैठ जाना है और अपने ध्यान में आत्मा में लीन हो जाना है, हमको स्वाध्याय भी नहीं करना, सत्संग भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, कोई बात करनी नहीं है, सुननी नहीं है, हम तो एकांत में बैठ करके आत्मा में लीन रहने चाहते हैं। ऐसा करके मैं सर्व कर्म उपाधि रहित सीध समान आत्मा हूं इत्यादि विचार से संतुष्ट होता है, विकल्प होता है उसमें, संतुष्ट होता है कि देखो मैं तो एक शुद्धात्मा का विचार करता हूं, मैं तो सीध समान निरुपाधिक तत्व हूं, ऐसा आत्मा का विचार किया, दूसरे का तो विचार नहीं किया।
बोले तो यही कहते थे, यही करो,
वही जवाब देंगे, वही उत्तर देंगे, शास्त्र में भी वो बात आती है, श्री गुरु भी कहता है और हम करते हैं,
क्या भूल है वो बताएगा।
हाँ, वहां तो अनुभव करने को बोला था और ये विचार करने से संतुष्ट होता है,
है।
क्या
विचार कर,
इतना विचार से संतुष्ट होता है। जैसे पहले कोई आदमी धंधा कारोबार व्यवसाय में था तो अशुभ भाव करता था, अब हमने छोड़ दिया, हमको क्या करेंगे कि बस एकांत में बैठकर आत्मा का ध्यान लगाएंगे और सारे दमो मंदिर हम आत्मा का विचार करते हैं, तो पाप तो नहीं करते हैं, आत्मा का ही विचार करते हैं, तो उसमें क्या गलती किया, संतुष्ट होना, यही गलती किया, गिनती किया। संतुष्ट कैसे होते हैं, गिनती करके होता है, वो नहीं किया और वो तो किया, इतना नहीं किया और इतना तो किया, ये जो गिनती है वो संतुष्टपना है, पर्याय बुद्धि है और विकल्प में संतुष्ट होता है, तो दर्शन वो तीव्र हो जाता है, मिथ्या दर्द बढ़ जाता है
और उल्टा पाप हो गया
है?
और उल्टा पाप बढ़ गया,
उल्टा पाप हो गया, ऐसी बात हो गई। दो दिन पहले बात किया था, दो दिन पहले, तीन दिन पहले वो बात किया था इधर। अच्छा, नहीं नहीं वंदन करना है। अरे क्या करता है तू, इत्यादि विचार से संतुष्ट होता है, परंतु यह विशेषण किस प्रकार संभव है, ऐसा विचार नहीं है कि मेरे मूल स्वरूप की अपेक्षा से ये विशेषण है, वर्तमान अवस्था में तो ऐसा कुछ है नहीं, वर्तमान में तो सिर्फ राग चल रहा है, अथवा अचल अखंड अनुपम आदि विशेषण द्वारा आत्मा को ध्याता है। क्या मैं अचल हूँ, अखंड हूँ, अनुपम हूँ आदि विशेषण द्वारा आत्मा को ध्याता है, ध्यान करने का प्रयास करता है, सो यह विशेषण अन्य द्रव्यों में भी संभवित है, सभी द्रव्य तो स्वभाव से अचल है, अखंड है और अनुपम है, तथा यह विशेषण किस अपेक्षा से है सो विचार नहीं है, तथा कदाचित सोते बैठते जिस अवस्था में ऐसा विचार रखन कर अपने को ज्ञानी मानता है। विचार होने से ज्ञानी मानता है, यहाँ तो पंडित जी ने ऐसा लिया कि उनको अपेक्षा की भी पता नहीं है कि ये बात द्रव्य अपेक्षा से है, पर्याय अपेक्षा से नहीं है। लेकिन हमको तो गुरुदेव की कृपा से ये पता चल गया कि ये जो मैं सिद्ध शुद्ध समान आत्मा हूँ, अखंड अचल अविनाशी हूँ, वो तो द्रव्य अपेक्षा से हूँ और मैं द्रव्य का ही चिंतन करता हूँ, तो ठीक अपेक्षा मालूम है हमको। पंडित जी लिखते हैं ऐसी हमारी बात नहीं है, हमको तो अपेक्षा भी मालूम है, लेकिन ऐसा विचार से संतुष्ट होना ये तो राग में विकल्प में संतुष्ट होने की बात हो गई। पर्याय में संतुष्ट होना क्या इससे लाभ होगा कि मिथ्यात्व तीव्र होने का लाभ होगा, ये विकल्प में संतुष्ट होने की बात कहीं उपदेश में नहीं आई, वो तो अनुभव कराने की बात है। हाँ मालपुआ न हो मगनू पानी हो एम छे, सही बात है। तथा ज्ञानी के आश्रव बंद नहीं है ऐसा आगम में कहा है, इसलिए कदाचित विषय कुशाय रूप होता है, वहां बंद होने का भय नहीं है। क्या होता है, कोई ऐसा विचार विकल्प करता है फिर भी उसको अशुभ भाव नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है, उसको भी खाने पीने आदि का तो परिणाम होते रहते हैं, तो वो क्या इसमें पकड़ता है कि आगम में तो कहा है कि ज्ञानी को बंद नहीं है, तो मैं भी शुद्धात्मा का चिंतन करने वाला हमको बंद नहीं होता है ऐसा मान लेता है, तो उसको विषय कषाय के परिणाम में बंद होने का भय नहीं रहा। क्या है पात्रता के लक्षण है उसमें जो दिया ने अपने दूसरा तुम कुछ मत खोज उसकी प्रस्तावना में दिया है, इसमें एक लक्षण ऐसा दिया है पात्रता किसको होती है कि विभाव का रस तीव्र होने से जिसको घबराहट होती है भय हो जाता है, ये पात्रता का लक्षण है। और उसको तो विषय कषाय में प्रवृत्ति होने से बंद का भय भी नहीं रहता है, ये स्वच्छंद का लक्षण है। पात्रता का मुख्य लक्षण क्या समाधान, तीव्र रस करके जब पर में स्वपना हो जाता है या विषय कषाय के परिणाम तीव्र रस से अपनत्व से हो जाता है, तब अंदर में ऐसा घबराहट हो जाए कि जैसे बहुत बड़ा अपराध हुआ हो, बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो, ऐसा परिणाम सहज हो जाए तो ये पात्रता का स्वरूप है। और जो निर्भय होकर के तीव्र विषय कषाय में प्रवृत्ति करता है वो स्वच्छंदता का स्वरूप है, वो स्वच्छंद का लक्षण है, वो पात्रता का लक्षण नहीं है। तो जिसको पात्रता नहीं वो ज्ञानी से कहा, ज्ञानी कहाँ से हुआ, हाँ वो पात्र ही नहीं है, तो ज्ञानी तो है ही नहीं। और वो क्या पकड़ता है कि ज्ञानी को तो बंध नहीं होता है विषय कषाय में, तो अपने को ज्ञानी मान लिया वहां, और पात्रता का भी ठिकाना नहीं है। जो वहां बंद होने का उसको भय नहीं है, स्वच्छंद हुआ रागादि रूप प्रवर्ता है, वो स्वच्छंद होकर ये रागादि रूप प्रवर्ता है। गुरुदेव मुख्यतया समय सार और निश्चय का उपदेश देते थे, साथ साथ ये सातवां अधिकार भी हर साल पढ़ाते हैं, एक साल भी ऐसा नहीं
नहीं चला
कि क्लास में सातवां अधिकार नहीं चलता मोक्ष मार्ग पर का। बर्तन का आवाज आता है, ताकत नहीं है वहां कोई किसी के पानी पीने की, रात को गुरुदेव तो नहीं पिए लेकिन गुरुदेव की उपस्थिति में कोई मुमुक्षु वहां पानी नहीं पी सके। अगर किसी ने पी लिया हो तो गुरुदेव का आंख लाल हो जाए। क्या होता है इधर, इधर कौन रात को आके पानी पीता है ऐसा करके, मतलब बहुत गुरुदेव का ताप था उतना। बहुत चुस्त थे,
कहते भी थे क्या बोलते भी थे क्या
ऐसा। हाँ ऐसा बना है कि किसी ने पी लिया हो कोई अनजान आदमी ने, कौन आए थे रात में इधर पानी पीने को, इधर कौन पीते थे पानी, दूसरे दिन प्रवचन में पूरा ठपका मिल जाए उसको, ऐसा नहीं चलता। धर्म करना है और ऐसा करते हो, ऐसा करते है ये धर्म करने का लक्षण है, ऐसा करे बहुत नहीं चले ऐसा। अरे हमारे मुमुक्षु लोग बरसात के सीजन में यात्रा में गए थे, बरसात के सीजन में क्या होता है जंगल में जीवात बहुत होती है, जैसे गाड़ी की लाइट में पैदा हो जाते हैं, सर्च लाइट में एक सेकंड में सैकड़ों हजारों पैदा हो जाते हैं, और ऐसे भी होते हैं बहुत मर जाते हैं, ऐसा नहीं चले, नहीं नहीं ऐसा यात्रा नहीं करना। क्या करते हो, पाप करते हो पुण्य करते हो उसका भी भान नहीं है तुमको। सत्संग प्रवृत्ति वाला मार्ग नहीं है, पुण्य छोड़ करके कोई पाप करने को जाता है तो ऐसा कोई मंजूर करेंगे नहीं।
स्वाध्याय सुनने जाए तो भी,
स्वाध्याय सुनने जाना तो भी विवेक तो रखना है, विवेक तो करना, बहुत हिंसा करके स्वाध्याय करना ऐसा किसने कहा। जैसे गुरुदेव रात्रि चर्चा करते थे तो वहां अंधेरा रहता था जी। क्या या तो एक बल्ब पूरा हॉल में एक नाइट लैंप जलता था कि कोई आए किसी को लग जाए नहीं, तो उतना क्या वो ट्यूबलाइट नहीं जला सकते थे हैं। जितना हो सके उतना कम पाप करना, जितना हो सके कम पाप करना, क्या इसका मतलब क्या है कि अभिप्राय में वो बात है कि जिसको परिपूर्ण निर्दोष होना है उसको जितना हो सके इतना दोष से बचना चाहिए, ये बात है। उसका मतलब ये है कि जो इस बात को नहीं समझता है और स्वच्छंद से पाप करता है तो ये पूर्णता का लक्ष्य वाला जो अभिप्राय है वो उसको नहीं समझा है, तो जो अभिप्राय को नहीं समझा है वो अभिप्राय के अनुसार कैसी प्रवृत्ति करना चाहिए उसको भी नहीं समझा है, ऐसी बात है उसमें। सो उसको बंद होने का भय नहीं है, स्वच्छंद हुआ रागादुरु प्रवृत्ता है, सो स्व पर को जानने का तो चिन्ह वैराग्य भाव है, स्व पर को जानने का चिन्ह तो वैराग्य भाव है। सो समय सार में कहा है कि सम्यक दृष्टेर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, ये समय सार का निर्जरा अधिकार का 136 नंबर का श्लोक है कि सम्यक दृष्टि को तो नियम से ज्ञान और वैराग्य शक्ति होती है, उसको वैराग्य होता ही है, चक्रवर्ती होता है तो इनको भी वैराग्य होता है और इंद्र होता है तो उसको भी वैराग्य होता है, उसको रस नहीं होता है भोग उपभोग में, भोग उपभोग होता है रस नहीं होता है, ये इसका वैराग्य है। क्या कहते हैं कि सम्यक दृष्टि को निश्चय से मैंने नियम रूप से, एक भी सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं होता कि जिसको भीतर में वैराग्य न हो, हाँ पूर्व पुण्य योग से वैभव हो सकता है, बाह्य में वैभव का संयोग हो सकता है। ऐसा नहीं कि सभी दरिद्री हो तो कहेंगे कि जो त्याग क्यों नहीं करता है, छोड़ दे उसको, वैराग्य है तो क्यों छोड़ता नहीं है
जी।
तो उसको रस नहीं आना, उसका अध्यास जुड़ जाना, उतना त्याग है उसकी भूमिका का। क्या अध्यास का छूट जाना, ये मेरी चीज है। चक्रवर्ती को छह खंड अपना नहीं लगता है, उनको लगता है कि ये मेरे से शून्य है, पूरा जो राज काज संपत्ति है, धन वैभव है, उसमें मैं कहीं भी
नहीं
हूं, मेरा कोई लगाव इससे नहीं है।
अखंड को साधता है,
खंड को, छह खंड को नहीं साधता है, अखंड को साधता है। वैराग्य होता ही है उसको नियम से,
नियम
हाँ, चतुर्थ गुण स्थान है, अविरत सम्यक दृष्टि है, बाह्य त्याग नहीं है, विकल्प है। इसका मतलब क्या है कि उसको विकल्प है लेकिन रस नहीं है, रस तोड़ दिया। वो एक सिक्का की दो बाजू है, सम्यक ज्ञान में तो जो सम्यक ज्ञान है वो एक सिक्का की एक बाजू है, और वैराग्य है वो सिक्का की दूसरी बाजू है। वो साथ में ही नियम से रहते हैं, उसको अलग कोई कर ही नहीं सकते। यानी मुमुक्षुता की भूमिका में रस कम करने का, रस तोड़ने का अभ्यास कर 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 तो सम्यक दृष्टि हुआ है। जिसको ये पता नहीं है कि सम्यक दृष्टि कैसे हुआ जा सकता है, उसको तो मुमुक्षुता का भी पता नहीं है। हाँ, रस को तोड़ करने का बहुत अभ्यास करके जब आगे बढ़ा तब सम्यक दर्शन हुआ है। तो सम्यक दर्शन में क्या हुआ कि जो विभाव रस के अभाव स्वरूप जो शुद्धात्मा है, विभाव भाव के अभाव स्वरूप जो शुद्धात्मा है, उसका तीव्रतम रस आने से निर्विकल्प दशा होती है, बहुत रस आने से। तो इसका बहुत रस कब आता है कि विभाव रस टूट जाता है, उसको आता है स्वभाव का रस। विभाव रस भी रहे और स्वभाव का रस रहे, दो बात कभी बनती नहीं है। तो जो सम्यक दृष्टि हुआ उसको तो है ही, क्यों बताते हैं, हाँ क्यों बताते हैं कि सम्यक दृष्टि को विषय कषाय की प्रवृत्ति है, इसलिए बताना पड़ता है कि उसको नियम से वैराग्य है, प्रवृत्ति है फिर भी रस नहीं है,
रस नहीं
है। ये बताने का कारण है। मुनि को वैराग होता है वो बताने की जरूरत नहीं
है,
क्योंकि उनका तो दिखाव दीदार ही ऐसा है कि उसको तो विषय कषाय की प्रवृत्ति नहीं है, तो कहने की जरूरत नहीं है कि उसको वैराग्य होता है। लेकिन सम्यक दृष्टि को वैराग्य होता है, वो बात भीतर की समझने लायक है, वरना अपराध हो जाएगा। क्या अपराध हो जाएगा? हाँ, वही कारण है, अटपटी दशा है, रीत लगी है अटापटी। चिन मूर्ति दग ददरग धारी की, मुझे रीति लगी है अटापटी। बाहिर नार के कृत दुख भोगे, या बाहिर देव के स्वर्ग के सुख भोगे, फिर अंतर सुख रस घटा घटी। बाहर के सुख दुख नहीं है उसको, अंतर का सुख है, वो तो दूसरी चीज होती है। और वो सुख ऐसा है कि इसके आगे न तो पुद्गल का दुख है, न तो पुद्गल का सुख है, दोनों नहीं है उसको। ये प्रकरण से जगत अनजान है, ये गुप्त तत्व है। क्या है? सम्यक दृष्टि को धर्म की प्राप्ति हुई, ये जो धर्म का विषय है वो गुप्त तत्व है, जो संसारी जीवों को लक्ष्य में आता नहीं है, इसलिए शास्त्र सब लिखे। सम्यक दृष्टि के निश्चय से ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है। फिर कहा है कि सम्यक दृष्टि स्वयं अहम जातु बंधो न में स्यात्, इति उत्तारो तुलक वदना रागिणो अपि आचरन्तु आलम्बन्ताम समिति परताम ते यतो द्यापि पापाः आत्मान आत्मम अवगम विरहात संति सम्यक्त शून्याः। वो तो सम्यक्त शून्य है ऐसा कहते हैं। सम्यक दृष्टि को दिखाने के लिए यही पीछे का कलश लिखा 137 नंबर का 37 नंबर का। वो सम्यक दृष्टि को ज्ञान वैराग्य साथ में होता है 136 में 36 में बताया। 37 में क्या लिखा कि स्वयमेव में सम्यक दृष्टि हूँ। कोई ऐसा मान लेता है निश्चयाभासे कि मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, शुद्धात्मा का चिंतन करता हूँ, मेरे कदाचित बंध नहीं है। इस प्रकार ऊंचा फुलाया है मुंह जिन्होंने, यानी मान चढ़ गया है। क्या
मान चढ़ गया?
ऊंचा फुलाया है मुंह, मैंने स्वच्छंद में मान में अभिमान में आ गया है। ऐसे रागी जीव, ऐसा रागी वैराग्य शक्ति रहित जो भी आचरण करता है तो करो, तथा पांच समिति की सावधानी का अवलंबन लेते हैं तो लो, कदाच संयम भी ले ले, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है। परंतु वे ज्ञान शक्ति बिना आज भी पापी ही है, उसको स्वानुभव नहीं है तो उसका राग भी बुरा है और इसका वैराग्य भी परमार्थ के हेतुभूत नहीं है। तो वो दो बात साथ में ले लिया।
सम्य दृष्टि ऐसा मतलब जानता है, ऐसा मानता है कि मैं सम्य दृष्टि हूँ?
नहीं, वो मानता है कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं न गृहस्थी हूँ न मैं त्यागी हूँ, मैं तो जो हूँ सो हूँ। सुबह बात नहीं चली, लोग पहचानेंगे, गालियां देने वाले भी पहचानेंगे, प्रशंसा करने वाले भी पहचानेंगे, लेकिन जिसको पहचानते हैं वो मैं नहीं हूँ। गृहस्थी जाने या त्यागी जाने, लेकिन ना आत्मा गृहस्थी है ना आत्मा त्यागी है। तो मेरी प्रशंसा करे वो भी समझते नहीं है, और मेरी बुराई करे वो भी समझते नहीं है। निंदा करने वाला भी नहीं समझता, प्रशंसा करने वाला भी नहीं समझता है, क्योंकि जिसको वो देखता है वो तो मैं नहीं हूँ और मुझे तो वो देख सकता नहीं है। ये बात लिया है, वो बात उसमें लिया है, योगसार में, समाधि शतक में लिया। हाँ, समाधि शतक में लिया, पूज्यपाद स्वामी ने समाधि शतक में लिया वो बात। नहीं, चरित भट्टा सीजंती दक्षण दर्शन भट्टा न सीजंती। ये सूत्र है अष्टपाहुड़ में, कुंड कुंड आचार्य का ये सूत्र है कि चारित्र से भ्रष्ट होने वाला सलट सकता है, सुलझ सकता है, लेकिन श्रद्धा से भ्रष्ट होने वाला का कोई आरा बारा नहीं है, उसका निवेदा नहीं आता। इसलिए कोई स्वच्छंद से विषय भोग में लगे या कोई समिति, पंच समिति, मैंने पंच महाव्रत आ गया उसमें मुनि होकर के सावधानी से उसका अवलंबन लेते हैं, त्याग कर देते हैं, परंतु वे ज्ञान शक्ति के बिना आज भी पापी ही है, सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो उसको अनंतानुबंधी की सभी प्रकृतियों का आश्रय होता है। अनंतानुबंधी का होता है तो फिर बाकी की प्रकृति का तो होता ही है।
है?
हाँ, आँख खुल जाए ऐसा कड़क है। अभी तो थोड़ा थोड़ा त्याग करे तो मान ले, देखो हम ये नहीं लेते, हम तो उसका हमने तो व्रत ले लिया है, हम तो छोड़ दिया है। 10 जगह तो दिखाने को बोलने को बोलता फिरे जगह जगह पर, देखो हमने ये छोड़ दिया है, हम तो चीनी इतनी साल से नहीं खाता, हम तो वो नहीं करते, दिखाने को फिरता है, ये तो पापी पापी है। वो अभिमान करता है, ज्यादा क्या करता है, जिस चीज का वो त्याग किया है उस त्याग का अभिमान करता है वो।
यानी पुण्य से ज्यादा तो पाप हो जाता है, पुण्य से ज्यादा पाप हो जाता है
उसको, पाप बहुत होता है, मिथ्यात्व का बड़ा पाप बहुत होता है, ऐसा होता है। यह दोनों आत्मा अनात्मा के ज्ञान रहित पने से, दोनों कौन, विषय कषाय से प्रवृत्ति करने करके अभिमान करने वाला और त्याग करने वाला, ये दोनों आत्मा अनात्मा के ज्ञान रहित पने से सम्यक्त्व रहित ही है, सम्यक्त्व रहित ही है इसलिए पापी है। क्या बोले, अधिकार निर्जरा का चलता है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि निर्जरा अधिकार है वो मुनियों के लिए लिखा है। देखो यह किसके लिए लिखा है, कि सम्यक दृष्टि नहीं है, सम्यक्त्व रहित है, चारित्र रहित ऐसा नहीं कहा, क्योंकि समिति तो पालता है, लेकिन सम्यक्त्व रहित है इसलिए पापी है। दोनों शब्द कहां से निकाला, सम्यक्त्व रिक्ता, द्विवचन कहीं आता है, चुत्तानो पुलक वदना रागिणो की आलम्बनताम समिति परताम ये यतो यद्यापि पापाः आत्मानम अवगम विरहितात् संति सम्यक्त शून्याः। समझा रहे ना, मैं दोनों शब्द नहीं लगाया, हूँ पोते सम्यक दृष्टि छु, मने कदी बंद थतो नथी, जेमनु मुख गर्व थी ऊंचू छे एवा रागी जीवो भले महाव्रतादि नु आचरण करो, समिति नु अवलंबन करो, तो पण तेवो पापी ज छे, कारण के आत्मा ने अनात्मा ना ज्ञान थी जीतो तेवो सम्यक करे छे। आमा बे शब्द नथी लीधा है, तमे आमा निकलतो नथी, द्विवचन क्यांथी निकलतो नथी, मूल श्लोक में संस्कृत में नहीं निकलता। तुम्हारे गुजराती में बे छे, बन्ने पापी छे, मूल मां छे, मूल मां टोडरमल जी अर्थ कर्यो छे,
आत्मा आत्मा बन्ने सब साथ जुड़े,
ये तो आत्मा ने अनात्मा ने नहीं जानता एवा एम लेवो छे, मिथ्या दृष्टि छे એ આત્માને અનાત્માને નથી જાણતા એટલે હું છે, એમાંથી દ્વિવચન જે નથી નીકળતો, એ પોતે ટોડરનો જે સ્વતંત્ર અર્થ કર્યો છે। યે દોનો આત્મા અનાત્મા કે જ્ઞાન રહિત છે સમ્યક્ત્વ રહિત હી હૈ, ક્યોંકે એક મેં ત્યાગી લિયા હૈ, એક મેં સ્વચ્છંદી લિયા હૈ, ભોગો ભોગ વાલા, ઇસલિયે નિકલતા હૈ, લિયા હૈ વો બરાબર હૈ, વો તો મૂલ મેં હૈ કે નહીં ઉતના થી, ઉત્થાન એ તો એક વચન માં જાય છે, કેમ કે એ તો જે અભિમાન કરે છે એ એવો જીવ લીધો છે, તો આમાં તો નીકળે ને, આમાં તો એક એક શબ્દ ના અર્થ કર્યા છે, ખંડાન વૈસરિત આપણા સમયસારમાં, એમાં ક્યાંય એમાં છે જ નહીં, બે બંને એવો શબ્દ જ નથી, તેવો એમ લીધું છે, તેવો બહુવચન લીધું છે, ને બહુવચન તો છે, હા કૃષ્ટિકા જોઈએ, ઠીક છે, મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવ રાશિ કરોડ ઉપાય કરીએ, વિશેષ રંજિત સદાત્મ અનુભવથી શૂન્ય છે, સુચેતન વસ્તુ તેમનું હે ઉપાધિ ભિન્નપણારૂપ જાણપણાના શૂન્ય હોવાથી એમ આત્મા અનાત્માનું અવગમન એટલે અજ્ઞાન છે એમ લીધું, કે મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવને શુદ્ધ વસ્તુના અનુભવની શક્તિ જ હોતી નથી એવો નિયમ છે, તે પર્યાય માત્રમાં રત છે, પહેલા આ લીધું સમ્યક્ત્વા રિક્તાહા સમ્યક્ત્વા એ પહેલા લીધું છે અને પુલક વદનાનું છેલ્લે લીધું છે. એમ બે વાત લીધી છે. કેવા છે એ જીવ કે એવું માને છે કે મને કર્મનો બંધ નથી. શું એવું ઊંચા કરીને ફૂલાવ્યા છે ગાલમુખ જેમણે એવા છે. અથવા કેવા છે અપીમાંથી કાઢ્યું છે. અપી લ્યો આવા છે અથવા આવા છે અપીમાંથી કાઢ્યું છે. આવા પણ છે અને આવા પણ છે બે રીતે ભૂલ કરનારા છે એમ બે જણા કાઢ્યા. અપી અથવા કેવા છે કે મૌન પણ અથવા થોડું બોલવું અથવા હું તો બહુ હીણો છું એમ કરીને બોલવું. ક્યા મેરે મેં તો બહુ દુર્ગુણ હૈ ઇસકા માન લેના નમ્રતા કા માન લેના ઓર ઉસકા સાવધાનપણા એને આલંબે છે. એવો પ્રકૃતિ જેવો એવો પ્રકૃતિનો સ્વભાવ છે જેમનો એ પણ મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. કેટલાક તો ગરજે છે કે અમે સમ્યક દ્રષ્ટિ છીએ અમને બંધ નથી. તો કેટલાક કેવા છે કે પ્રકૃતિના સ્વભાવને લઈને મૌન રહે છે થોડું બોલે છે. અમે તો નર્મ છીએ નરમ છીએ નમ્રતા વાળા છીએ અમે તો ભાઈ બહુ દોષ વાળા છીએ એમ કરીને અભિમાન કરે છે એવો દેખાવ કરે છે. એ બંને પ્રકારના ત્યાં આ પ્રમાણે રીતે સમસ્ત પ્રકૃતિનો સ્વભાવ ભેદ છે એમાં પરમાર્થ તો કાંઈ નથી. જેટલા કાળ સુધી જીવ પુત્પર્યાયમાં પોતાપણો અનુભવે છે તેટલા કાળ સુધી મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે રાગી છે અને કર્મબંધને કરનારા છે. પોતે ટોડરમલજીએ પોતે બંનેનો લીલ બંને દોનો એટલે બંને પ્રકારના એમ લેવું છે. બે જીવ એમ નહીં
બંને
બંને પ્રકારના જીવો જેટલા હોય એટલા એટલે બહુ વચન વાપર્યું છે. શું બહુ વચન વાપર્યું છે? જીવ વચન નથી પણ બહુ વચન છે. સંતી છે બહુ વચનમાં વપરાય છે બરાબર છે એટલે બહુ વચનમાં વપરાય છે. અને દોનો જે શબ્દ કાઢ્યો છે એ બે પ્રકારની જાતિ લેવી છે બાકી બહુ વચન જ લેવો છે. ઠીક વાત છે. ફિર પૂછતે હૈ કે પર કો પર જાના તો પર દ્રવ્યો મે રાગાદિ કરને કા ક્યા પ્રયોજન રહા. ફિર પૂછતે હૈ કિસકો પૂછતે હૈ? સ્વચ્છંદી જીવ કો પૂછતે હૈ કે તે પર કો પર જાના શુદ્ધાત્મા કા સ્વ જાનતે હો ઓર પર કો પર જાનતે હો ફિર રાગાદિ કરને કા ક્યા પ્રયોજન રહા. તો વહાં વહ કહેતા હૈ કે મોહ કે ઉદય સે રાગાદિક હોતે હૈ મેં ક્યા કરું યે તો મોહ કે ઉદય સે હોતે હૈ. પૂર્વ કાલ મેં ભરત આદિ જ્ઞાની હુએ ઉનકે ભી વિષય કષાય રૂપકારી હુઆ સુનતે થે ચક્રવર્તી કો ભી ઇતના હોતા હૈ ઇતના હોતા હૈ એસા લે લેતા હૈ યે બાત ઠીક નહીં હૈ.
ખબર નથી ને ચક્રવર્તી સંપદા એને શ્રી સામ
બોલું કાગ વીઠ સમજાનત હૈ સમ્યક દ્રષ્ટિ લોગ. એ બ્રાસીદાસજી ને ગયા ભીતર મેં ક્યાં જાનતે હૈ વો નહીં દેખતે ઉસકી પ્રવૃત્તિ કો દેખ લેતે હૈ. ઉત્તર કે જ્ઞાની કે ભી મોહ કે ઉદય સે રાગાદિક હોતે હૈ યહ સત્ય તો હૈ પરંતુ બુદ્ધિપૂર્વક રાગાદિક નહીં હોતે. બુદ્ધિપૂર્વક મેને યહાં અભિપ્રાય પૂર્વક રાગાદિક રાગ કરને કી બુદ્ધિ નહીં ઇસ પ્રકાર સે બુદ્ધિપૂર્વક રાગાદિક એક ભી દોષ કરને કી બુદ્ધિ નહીં. સમ્યક દ્રષ્ટિ કો વર્તમાન એક સમય મે પરિપૂર્ણ શુદ્ધ હો સકતા હૈ તો દૂસરા સમય કે લિયે ઉસકો ઉધારી કા વ્યાપાર કરના નહીં હૈ અવિશુદ્ધ હો જાય. ઇસલિયે બુદ્ધિપૂર્વક રાગાદિક નહીં હોતે ઉસકા વિશેષ વર્ણન આગે કરેંગે. દેખો ये सम्यक दृष्टि का स्वरूप की बात आई तो कैसे के वर्णन आगे करेंगे हम. हाँ वो आगे बहुत लिखना चाहते थे कई बार ऐसा लिखा है ये बात आगे कहेंगे ये बात आगे कहेंगे क्योंकि उसके दिमाग में बहुत बात भरी थी और जो प्रकरण खोल करके हम कहेंगे तो बहुत बढ़िया कहेंगे इसके बात उसके अक्षोपम में थी लेकिन वर्तमान मुमुक्षु का सौभाग्य नहीं रहा તો આયુષ ઉસકે પહેલે પૂરા હો ગયા બાકી બહુ જગ્યા લિખા હૈ ઉન્હોને ઇસકી ચર્ચા आगे करेंगे।
शिवादिदेव सिमंदर भगवान नो जय हो परम कृपाणु जी कहान गुरुदेव नो जय विद्राक्ष दिगंबर जैन धारण जय हो।